ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ततो जया मुदीरये नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। श्रीमद्भागवतम स्कंद एक अध्याय तीन श्लोक क्रमांक नौ। शब्दों का परिचय। तूर्य तूर्य धर्मकला सर्गे नरनारायण ऋषि भूत्वा आत्मोपशम उपेतम अकरोत् दुश्चरम तपः। तूर्ये धर्मकला सर्गे नरनारायणादृशि भूत्वात्ममोपशमोपेत। अकरो दृश्यरं तपः। तूर्ये धर्मकला सर्गे नारायणो ऋषि भूत्वा आत्मोपशम उपेतम् अकरो दृश्यरं तपः। सूर्ये धर्मकला सर्गे नरनारायणाभिषि भूत्वात्मोपशमोपेतम् अकरो दृश्यरं तपः।
सूर्ये धर्मकला सर्गे
भूत्वात्मोपशमोपेत
अकरो दृश्यरं तपः।
सूर्ये धर्मकला सर्गे
नरनारायणऋषि
भूत्वात्मोपशमोपेतम्
अकरो दुश्चरं तपः।
सूर्ये धर्मकला सर्गे
नरनारायणऋषि
भूत्वात्मोपशमोपेतम्
अकरो दुष्करं तपः।
सूर्ये धर्मकला सर्गे
नरनारायणऋषि
भूत्वात्मोपशमोपेतम्
अकरो दुश्चरं तपः।
सूर्ये धर्मकला सर्गे
नरनारायणऋषि సమాపేతం शब्दों का अनुवाद सूर्य चौथी बार धर्म कला धर्मराज की पत्नी से सर्गे उत्पन्न नर नारायणो नर तथा नारायण नर तथा नारायण ऋषि भूत्वा होकर आत्म उपशम इंद्रिय निग्रह द्वारा उपेतम प्राप्ति के लिए अकरोत् किया दुष्चरम अत्यंत कठिन तपः तपस्या। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की
जय।
अनुवाद चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों के वश में करने के लिए कठिन तपस्या अनुकरणीय तपस्या की कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तात्पर्य राजा वृषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। अतएव हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं को ऐसा किया। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे वृद्ध जीवों का भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। भले ही मैं अभी सबों के स्मृति में ही भगवान चैतन्य भी ऐसे ही कार्य किए। इस लौह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय पर्वत स्थित बद्री नारायण में की जाती है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साक्रजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणमलिता शीर्षाकारुतश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल हम लोग आठवें श्लोक का चर्चा कर रहे थे। आठवें श्लोक में शुक गोस्वामी भगवान का तीसरा रूप नारद मुनि का वर्णन कर रहे थे ना। बहुत सारे अवतारों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। मैं आपको कल बताया था बहुत सारा अवतार भगवान के पूरे कितने अवतार हैं, कितने प्रकार के अवतार हैं, छह प्रकार हैं।
उसमें से पहले पुरुष अवतार का वर्णन हो चुका है, फिर बाद में अभी कुछ अलग लीला अवतार, सत्यावेश अवतार, इन सारा अवतारों को गिना रहे हैं, पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसा कर। तो पहले उन्होंने कुमार, चार कुमारों का वर्णन किया, वो भी सत्यावेश अवतार है, फिर बाद में वराहदेव का वर्णन किया एक एक श्लोक में, फिर आगे उनका एक्सप्लेन करेंगे, उनके लीलाओं को डिटेल्स में लिखेंगे, अभी खाली एक एक श्लोक में बता रहे इसके गर्भ में यहाँ पर उस जगह पर इस अवतार हुआ भगवान का, ऐसा करके। तो पहले चार कुमार हुए ब्रह्मा जी के, फिर बाद में वराह भगवान हुए, भगवान वराहदेव का रूप लिए, फिर बाद में भगवान जो है नारद मुनि का रूप लिए, नारद मुनि भी भगवान का ही सत्यावेश अवतार है कि नहीं। तो सत्यावेश अवतार मतलब मैंने कल बताया था, किसी एक जीवात्मा के ऊपर भगवान का शक्ति को जब निवेश आवेश करते हैं तभी उसको शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है। फिर जब उस शक्ति को विड्रॉ किया जाता है, वापस लिया जाता है, तो फिर नॉर्मल जीवात्मा बन जाते हैं, फिर उनके अंदर कोई पावर नहीं रहता ऐसा। तो ऐसे जैसे परशुराम वगैरह हो गए, नारद मुनि, तो नारद मुनि जो है ना भक्ति शक्ति के अवतार थे। फिर हमने कल बताया था नारद मुनि जो है पंचरात्र ग्रंथ का, खास करके नारद पंचरात्र का उन्होंने वर्णन किया था। और ये नारद और पंचरात्र मतलब मैंने क्या बोला था, नारायण के द्वारा वर्णन किया गया विधि उनकी पूजा करने के लिए, है ना। ये सारे चीजें हम कल सुनेंगे। तो आज के श्लोक में क्या बताते हैं सूत गोस्वामी कि फोर्थली चौथे में भगवान क्या करते हैं, चौथे अवतार में भगवान नरनारायण ऋषि के अवतार लेते हैं। अलग अलग योनियों में, अलग अलग मनुष्यों में, अलग देवताओं में, ऋषियों में, पशुओं में और मछलियों में, सब जगह भगवान अवतार लिए हैं, है ना। मछली बने हैं, सुअर बने हैं, है कि नहीं, सांप बने हैं, आज मनुष्य के रूप में आए हैं, ऋषि के रूप में आए हैं देवर्षि नारद, अभी अभी मुनि और एक ऋषि नरनारायण ऋषि के रूप में फिर से अभी आ रहे हैं, देवता बने हैं, राजा बने हैं, है ना। हर एक जगह भगवान अवतार ले लेके, क्यों अवतार लेते हैं, अवतार के पीछे क्या कारण है, अनेकों धर्म संस्थापनार्थाय, है ना। कभी कभी दुष्टों का विनाश करने, संतों का रक्षा करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए, और युग धर्म का पालन करने के लिए, सिखाने के लिए लोगों को। सभी अवतार का भले ही अलग अलग कई मुख्य दिखाई पड़ते हैं, मगर उद्देश्य यही है कि सारे भौतिक जगत के जीवात्माएं कैसे मेरी भक्ति करेंगे और मेरे पास वापस आ जाएंगे, ये भगवान का उद्देश्य है। एक पिताजी क्या चाहेगा, मेरे बेटा मुझे प्रेम करे, मेरे घर में रहे, है कि नहीं, यही ना। ठीक वैसे श्री भगवान हम सभी के सुप्रीम फादर है ना, सभी के पिताजी होने के नाते वो हमेशा चाहते हैं कि हर एक जीवात्मा उनको प्रेम करे, उनकी भक्ति करे और इस भौतिक संसार में दुख न भोग के वापस आ जाए। कौन बाप चाहेगा उसका बेटा दुख भोगे, कष्ट में रहे, संतान कोई भी कोई नहीं चाहेगा, कोई माता पिता नहीं चाहेंगे। ठीक वैसे कृष्ण कैसे चाह सकते कि हम इस भौतिक जगत में रहे, ये भौतिक जगत का बनावटी कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम, हर परिस्थिति में हमको दुख ही मिलता है, चाहे हम पुण्य करें, चाहे हम पाप करें, चाहे हम कितना भी मेटेरियली एडवांस हो जाए, साइंटिफिकली एडवांस हो जाए, मगर ये दुख जो है ना हमको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि संसार ही ऐसा है ना। हर एक व्यक्ति संसार में दुखी है, भले ही बड़े बड़े गाड़ियों में जाएंगे, पूछेंगे हाउ आर यू, तो आई एम फाइन करके जवाब देंगे, थोड़ा चेहरे में हंसमुख दिखाएंगे, मगर अंदर ही अंदर बहुत पीसते रहते हैं। हर एक व्यक्ति, जितना बड़ा व्यक्ति उतना बड़ा दुख, हमारे गांव में कहावत है, जितना बड़ा वृक्ष उतना बड़ा हवा उसको लगता है ऐसा। मगर हमें दूसरों को नहीं दिखाते हैं, कभी कभी हमको पता नहीं लगता, हम सोचते हैं कि अरे मैं अभी दुखी हूँ क्यों, क्योंकि मेरे पास वो पैसा नहीं है, मैं अभी दुखी हूँ क्यों, क्योंकि मेरे पास स्त्री नहीं है, मैं अभी दुखी हूँ क्यों, क्योंकि मेरे पास बच्चे नहीं है, ऐसा हम लोग सोचते रहते हैं। मगर ये जब उस चीज प्राप्ति हो जाती है, फिर दूसरा कोई एक दुख, दूसरा कोई एक समस्या हमारे सर पे आ बैठ जाता है। और जो भी भौतिक समस्याएं हैं इस संसार में हमको, चाहे परिवार का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो शरीर का हो, हाँ ये कोई भी समस्या क्यों ना हो, उस समस्या का समाधान जैसे ही हम करने के लिए ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते एक दिन अगर उसकी समाधान कर लेते हैं, तो उस समस्या की समाधान की जो प्रक्रिया है या विधि है उस विधि के द्वारा और कुछ दो चार समस्याएं क्रिएट हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? एक दवाई खाया बुखार कम होने के लिए, मगर दवाई हाई डोज हो गया, फिर वो चक्कर आके गिर गया, है ना? क्योंकि वो दवाई बुखार को ठीक करने के लिए बीमारी को, मगर उस दवाई से दूसरा बीमारी भी क्रिएट हो जाता है। तो ये भौतिक समस्याएं बीमारी जैसा है, उसको ठीक करने के लिए भौतिक उपायों को अवलंबन करते हैं, अपनाते हैं, और उस भौतिक उपायों के द्वारा और दो चार पांच सात क्या करते हैं, समस्याएं शुरू हो जाते हैं। ये भौतिक जगत है। किसी भी हाल में हम यहां सुखी नहीं रह सकते, इसका बनावटी ऐसे हुआ है। इसलिए श्री भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि ये सब जीवात्माएं यहां रहें। हम बड़े बदमाश हैं, इसलिए हम वहां नहीं जाना चाहते, यहां पर रखे हुए हैं, क्योंकि संसार के भोग चाहिए, स्वामी बनने की प्रवृत्ति है, भोग करने की प्रवृत्ति है, स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति है, इन सारे प्रवृत्तियों के वजह से हम यहां लटके हुए हैं। नहीं तो कृष्ण हमेशा चाहते हैं कि व्यक्ति मेरा भजन करे, मेरी भक्ति करे और मेरे पास वापस आ जाए, और मेरे पास आके उसको आनंद में रहेगा। ये समझ क्यों नहीं रहा है कि उसको ज्यादा सुख मेरे पास मिलेगा, मेरे जगह पे मिलेगा, मेरे घर के पास मिलेगा, इधर क्या भटक रहा हो, है कि नहीं? ऐसे भगवान चाहते हैं, मगर हम लोग नहीं चाहते। इसलिए वो बार बार आते हैं, कभी ऋषि बन के, कभी भक्त बन के, अलग अलग रूपों में आते हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि सुनो, आप लोग अपना जो ये अहंकार को त्याग करो, अपना भोग प्रवृत्तियों को त्याग करो, इंद्रिय निग्रह करो और मेरी भजन करो और मेरे पास वापस आओ, देखो आप दिव्य आनंद में हमेशा रहेंगे। हर समय ये शिक्षा देते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। 500 प्रभुपाद लिखते हैं, कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अभी अभी आए, लोग भूले भी नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के किताब में भी लिखा हुआ है लॉर्ड चैतन्य आए थे करके बंगाल में 500 साल पहले। तो उन्होंने क्या, स्वयं सुप्रीम पर्सन है, स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य कोई और नहीं है, और राधा और कृष्ण स्वयं है। तो आके क्या किए, अपने आचार्य जीवर सिखाए, अपने को आचरण में लाके वो हम सबको सिखाया चैतन्य महाप्रभु ने। भगवान श्री कृष्ण बोल दिए है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मनमना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरी भजन करो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ करके कृष्ण बोल दिया। मगर देखे कोई नहीं आ रहा, समझ नहीं पा रहे कैसे आना है उनको। अच्छा मैं तो प्रवचन तो दिया बहुत अच्छा अर्जुन को, मगर करके नहीं दिखाया, प्रैक्टिकल नहीं दिखाया मैं। तो सर्वधर्मान कैसे त्याग करना है, सब कुछ को कैसे छोड़ना है, और सर्वधर्म मतलब कौन सा धर्म को छोड़ना है, उसको करके दिखाना पड़ेगा इनको। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एकम पुरुष पुराण। ये वैराग्य विद्या को सिखाने के लिए स्वयं पुरुष पुराण अनादिर आदिर गोविंद वो कृष्ण तो स्वयं आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और खुद कृष्ण की भक्ति किए और हमको सिखाया, देखो ऐसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। खुद कृष्ण है और कृष्ण 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 करके रोते हैं, वो है खुद ही कृष्ण और वो चिल्ला रहे कहां है मेरे कृष्ण, कहां है मेरे कृष्ण करके। क्यों? वैसे हमको सिखा रहे थे कि एक हरेक व्यक्ति को इस प्रकार कृष्ण के पीछे पागल होना चाहिए, पैसे स्त्री परिवार इन सारे चीजों के प्रति नहीं, भगवान कृष्ण के प्रति व्यक्ति को इस प्रकार से आसक्त होना चाहिए, पागल होना चाहिए, रात को नींद नहीं आना चाहिए कृष्ण के लिए। मधुर गौर को समझते हैं का इसके लिए हमको नींद नहीं आना चाहिए, रात को उठ के बॉम्बे जाऊंगा करके नहीं भागना चाहिए, रात को उठ के कैसे दो चार माला जप करो, कृष्ण की सेवा करो करके ऐसे विचार आना चाहिए। जब ऐसे विचार आता है तब हम सोच सकते हैं कि हाँ अभी सही ट्रैक में हूं मैं। तो इन सारे चीजों को सिखाने के लिए श्री कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप को अंगीकार किए, स्वीकार किए उन्होंने, भक्त के रूप में आए। इसी प्रकार से भगवान स्वयं हर बार आते हैं हम लोग को सिखाने के लिए। जैसे कल के श्लोक में हमने सीखा, हमने सुना कि नारद मुनि क्या लिखे, पंचरात्र के ग्रंथ लिखे, उसमें क्या लिखा, नैष्कर्म्य निष्काम कर्म के बारे में उन्होंने लिखा ना। तो ये निष्काम कर्म क्या है, श्री कृष्ण की भक्ति कर्म, वो जिस कर्म से हम इस भवबंधन से छुटकारा मिल सकता है,
वो नहीं जिससे हमको पैसा मिलेगा, जिससे हमको नाम मिलेगा, जिससे हमको फायदा होगा, वो सारे कार्य नहीं। वो सारे कार्य हमको इस भौतिक संसार में जकड़ लेंगे। कभी कभी हम बहाना कैसे मारते हैं मालूम है, ओ ये शरीर है, ये पेट है, ये परिवार है, तो उनका भरण पोषण करने के लिए तो मुझे काम करना पड़ेगा, शरीर है तो उसका बचाव के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, घर तो होना चाहिए, इस प्रकार के बहाना देकर हम पूरा जिंदगी को क्या करते हैं, हम उसमें बिता देते हैं। अरे शरीर है तो उसका मेंटेन तो करना पड़ेगा, परिवार है तो उनका देखभाल तो करना पड़ेगा, इस प्रकार से बोलते बोलते क्या करते हैं, जैसे हम थोड़ा सा कामयाब हो जाते हैं कुछ किट-पिट करने के लिए, तो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसों को मैनिपुलेट करते हैं, फिर उसको अच्छे से रखते हैं उसको बढ़ाने के लिए, और सब इसमें ऐसे ही समय 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 बीत जाता है, फिर कुत्ते बिल्लियों के साथ शादी वादी करके बच्चा वच्चा पैदा करते हैं, और फिर ऐसे हम लोग मर जाते हैं, पूरा जिंदगी हमारा उसमें खत्म हो जाता है। ये केवल बहानाबाजी है कि उसके लिए कार्य कर रहा हूं करके। ये निश्चय है कि व्यक्ति को अपना नियत कर्मों को करना चाहिए, अगर नियत कर्म नहीं करेगा तो व्यक्ति अपना पेट के लिए भी भूखा हो जाएगा, कृष्ण भी गीता में इस बात को कहते हैं। मगर हमको ध्यान रखना चाहिए नियत कर्म का भी उद्देश्य श्री कृष्ण की भक्ति होना चाहिए। पेट में खाना जो खाते हैं तब भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि मैं खाना इसलिए खा रहा हूँ कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए, और परिवार भी उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे परिवार को मैं कृष्ण भक्ति में लगाऊंगा इसलिए मेरे परिवार को ध्यान दे रहा हूँ, इस प्रकार के उद्देश्य होना चाहिए। इन्हीं चीजों को इस प्रकार के उद्देश्य के साथ जो कार्य किया जाता है उसको निष्काम कर्म बोला जाएगा, नहीं तो निष्काम कर्म नहीं। ये चीज नारद मुनि सिखाए। ठीक वैसे अभी नरनारायण ऋषि हुए। ये नरनारायण ऋषि किसके है? ये नरनारायण ऋषि हुए, तो ये नरनारायण ऋषि क्या किए मालूम है? उन्होंने वेदों का भाष्य, सॉरी राजा धर्म के पुत्र, ये नरनारायण ऋषि कौन थे? राजा धर्म के पुत्र के रूप में ये उत्पन्न हुए, जन्म हुए। ये दो जन थे, नर और नारायण, स्वयं भगवान ही है। नारायण स्वयं भगवान है, नर उनकी शक्ति है, नरनारायण। ये नरनारायण ही द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए थे। नर जो है वो अर्जुन है और नारायण जो है स्वयं कृष्ण है। उन्होंने नरनारायण ऋषि के रूप में आके क्या किया? जैसे नारद मुनि आके पंचरात्र लिखा, हम लोगों को निष्काम कर्म के बारे में सिखाया, ठीक वैसे ये नरनारायण ऋषि धर्म के पुत्र के रूप में उत्पन्न होके दोनों हिमालय की पर्वतों पर बद्रिका आश्रम में कठोर तपस्या को स्वीकार किया, ब्रह्मचर्य को व्रत को पालन करते हुए कठोर तपस्या स्वीकार किया, और इस तपस्या करते करते साथ साथ उन्होंने कई वैदिक इंस्ट्रक्शंस, वैदिक शिक्षाओं को भी उन्होंने दिया, जिसमें श्री कृष्ण की निष्काम कर्म के बारे में वर्णन किया गया है, और वो अपने जीवन में भी उस कार्य को उतार के तपस्या करके दिखाया। तो कौन सा श्लोक है फेमस श्लोक, प्रभुपाद बार बार कहते हैं ना, पुत्र का एव बार बार कहते ना कोई भी लेक्चर में तपस्या के बारे में, प्रभुपाद यहाँ पे ऋषभ मुनि अपने पुत्रों को कहते हैं जो तपो दिव्यम पुत्र का है, वहां क्या पूरा श्लोक आता है? तो श्लोक में ऋषभ देव अपने पुत्रों को बतलाते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, और ये भगवत प्राप्ति केवल तपस्या के द्वारा ही हो सकता है, इसलिए हे पुत्रों आप लोग अपने जीवन तपस्या के लिए लगा दो। ये होते हैं असली पिताजी। पिताजी केवल अपना घर की पत्नी की बच्चों की भरण पोषण करना ही नहीं, उसमें पिताजी का पूरा ड्यूटी खत्म नहीं होता है, अधूरा रह जाता है। जो पिता अपने पुत्रों को और पत्नी को और बच्चों को कृष्ण भावनामृत में नहीं लगाता है, तो जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की, वो अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन नहीं करता है ना। तो पिताजी का कर्तव्य के पुत्र को सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं, उसको तपस्या सिखाए। ऋषभदेव अपने पुत्र को क्या सिखाए? उन्होंने बोले कि तपस्या करो, क्योंकि तपस्या ही जीवन का लक्ष्य है। बताओ तो ये तपस्या करना चाहिए। इसी चीज को हम लोगों को सिखाने के लिए स्वयं भगवान नरनारायण ऋषि के रूप में आके कठिन तपस्या किया और उस तपस्या के द्वारा हमको सिखाया कि हमें तपस्या करना चाहिए करके। देखिए ये तपस्या क्या होता है उसको भी थोड़ा समझना चाहिए। तपस्या मतलब क्या है, तप मतलब क्या है, तपना, जलना है कि नहीं, सिंपल मीनिंग तपस्या का। असलियत में तपस्या का अगर ऐसे सरलता से अगर हम उसको समझे, जान बूझ कर अपने शरीर को कष्ट देना, समझ रहे, जान बूझ कर अपने शरीर को कष्ट देना मगर भगवत प्राप्ति के लिए। किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए, उसको कहते हैं तपस्या। और कष्ट तो शरीर को बहुत देते हैं। देखो नौकरी करते हैं हम तो कष्ट नहीं है, टाइम पर उठना, टाइम पर सब कुछ करना, प्रेशर में करना, कभी कभी बिना खाए पिए भी लगे रहना। और यहाँ पे तो शिफ्टिंग होता है ना, तीन शिफ्ट होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट में व्यक्ति रात भर काम करता है तो वो कष्ट नहीं है शरीर, वो कष्ट है, मगर वो कष्ट को तपस्या नहीं बोला जाएगा। वो व्यक्ति बोल सकता है कि कितना तपस्या कर रहा हूं मैं मेरे परिवार के लिए तपस्या का शब्द वो वहां पे व्यवहार कर सकता है, उसको तपस्या नहीं कहा जाएगा, वो इंद्रिय भोग के लिए कहा जाता है। और हम लोग उपवास रहते हैं वो तपस्या है क्योंकि भगवत प्रसन्नता के लिए। मगर कभी कभी राजनीतिक नेताएं और कभी कभी ऐसे लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दो तीन दिन का अनशन करते हैं, ये मांग पूरी होनी चाहिए, तो वो तपस्या नहीं है, वो तो सेंस ग्रेटिफिकेशन में माना जाएगा। हाँ कोई प्रश्न कर सकते हैं, वो प्रभु ये किस प्रकार से इंद्रिय भोग हो सकता है, वो व्यक्ति तो सोसाइटी के लिए कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है, लोगों के लिए कल्याण के लिए कर रहा है। प्रभुपाद इसको बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपैंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, विस्तृत इंद्रिय भोग है ना। खुद का इंद्रिय भोग मतलब खुद का खाना, खुद पहनना, खुद आराम से रहना। मगर कभी कभी देखोगे पिताजी जो है ना बच्चों को खिलाने में खुश होते हैं है ना, और चीफ मिनिस्टर पूरे राज्य को खिलाने में खुश होता है। तो ये कैसे मालूम है, ये भी इंद्रिय भोग है, मगर कैसे, ये इंद्रिय भोग केंद्रीभूत ना होके, सेल्फ सेंटर्ड ना होके वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इन सारे लोग अगर खुश रहेंगे तो मैं खुश रहूंगा, समझ रहे, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे सब खुश रहेंगे तो मैं खुश रहूंगा। तो अल्टीमेट कहां आता है, सेंटर में कौन होते हैं, हम। इसीलिए इसको भी एक्सपेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है। तो ये सारे चीजों को तपस्या नहीं कहा जाएगा। तपस्या निश्चित रूप से शरीर को कष्ट देना है मगर वो किसके लिए, श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको कहते हैं तपस्या। तपस्या का अर्थ, तपस्या मतलब ये सुनने मात्र से हमको क्या होता है कि जंगल में जाना, एकांत में जाना, ऐसे बैठना है ना, ऐसे सब चीजों को हमारे दिमाग में आते हैं, नहीं। हमारे लिए तपस्या क्या है, श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से वो बता के चले गए हैं। जस्ट ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्य उदय से पहले तीन बजे, ढाई तीन बजे के बाद सूर्य उदय से पहले, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। उठ के ही तुरंत कृष्ण का नाम लेना, भगवान जी का दर्शन करना, हो सके तो मंगल आरती घर में हो या मंदिर में अटेंड करना। उसके बाद नियमित जो नियत माला, द प्रेस्क्राइब राउंड्स ना, उसको जपा करना। एक घंटा, डेढ़ घंटा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना भी बहुत बड़ा तपस्या है। आप कोई आम आदमी को पकड़ के उसको बोलिए डेढ़ घंटा जप करने के लिए हरे कृष्ण, नहीं कर पाएंगे कोई भगवान नाम का जप। जपा करना, जपा करने के बाद आधा घंटा बैठ के भागवत सुनना। भागवत भी कोई नहीं सुन पाएगा, किसी को बुलाइए आधा घंटा बैठ के सुनो क्या बोल रहे हैं महाराज, नहीं होगा, इसको बस की बात नहीं होगा कोई आदमी का, ये तपस्या है। इस प्रकार की मॉडर्नाइजेशन की दुनिया में, भौतिकता की दुनिया में, इन सारा कार्यों को सुबह का 9 बजे तक का पालन करना, चार नियमों का पालन करना, अवैध संग ना करना, जुआ नहीं खेलना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, सबसे बड़ा तपस्या तो चाय ना पीना, बताइए सबसे बड़ा तपस्या। कभी मारते ऑफिस में, पूछती एक दो ऑफिस में आता रहता है ना, तो ये तपस्या है, कांदा लहसुन खाना, मांस मछली ना खाना, एकादशी के दिन उपवास रहना। और उपवास भी कैसा उपवास? अन्न से वर्जित। फ्रूट्स फल दूध खा सकते हो, अन्न नहीं खाना, क्योंकि कलयुग के लोग अन्न से ज्यादा आसक्त हैं, चावल गेहूं इससे ज्यादा आसक्त है। ये एक दिन दो दिन मिलेगा ना, एकदम मछली की जैसे छटपटाएंगे। इसलिए अन्न वर्जित है हमारे लिए, वो हमारे लिए तपस्या है ना, सोलह माला हमारे लिए तपस्या है। तो इन तपस्याओं को करना चाहिए हमको, ये श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए नियम बता दिया। अत्यंत सरल है अगर हम भक्तों की संगति में रहें तो, ये अत्यंत कठिन है अगर हम संगति में नहीं रहेंगे तब, ये अत्यंत कठिन है। तो इस प्रकार की तपस्याओं को जीवन में उतारना चाहिए। इस चीज को नरनारायण ऋषि को खुद करके दिखाए, भगवान होने पर भी तपस्या। तपस्या तो तपस्या कठोर, और कैसी तपस्या मालूम है? कि किसी भी प्रकार का बाधा विघ्न आने पर भी वो ना हटना अपने तपस्या से। आपको मालूम है जब कभी भी कोई ऋषि मुनि अगर तपस्या करते हैं, सबसे बड़ा डर किसको होता है? इंद्र। इंद्र सबसे बड़ा डर को है। और डर का डर किस चीज का डर है? कुर्सी का, कि मेरा कुर्सी छूट ना जाए। ये स्वर्ग में भी ये चलता रहता। ये नरनारायण ऋषि जब कठोर तपस्या बद्रिका आश्रम में कर रहे थे, उस समय भी इंद्र का यही स्थिति हुआ। तो उसने कामदेव और कुछ अप्सराओं को, अप्सराएं द हेवनली प्रोस्टिट्यूट्स, स्वर्ग की वेश्याएं, तो ऊपर लिखते हैं एक परपोर्ट में, तो उन लोगों को उन्होंने भेजा कहां पे? ये ऋषि के पास, नरनारायण ऋषि के पास। नरनारायण ऋषि के पास भेजा ताकि उनकी तपस्या का भंग करें। एक साधक का तपस्या मुख्यतः एक पुरुष का, एक ऋषि का, ये स्त्रियों के द्वारा बहुत आसानी से भंग किया जा सकता है, और खास करके पैसा। इस संसार में बहुत कड़क आसक्ति है ध्यान को केंद्रित करने जैसा, और एकदम चुटकी में तो है स्त्री और पैसा। तो ये साधक के लिए हमेशा हर जगह, हर शास्त्र में, हर गुरु वो सतर्क करते हैं स्त्री और पैसा, इन दोनों चीजों से सतर्क रहने के लिए। तो ये इंद्र भेजा अप्सराओं को, वो भी कामदेव जी के साथ साथ में, कामदेव जी के साथ। तो जाके वो लोग नरनारायण ऋषि के उसको तपस्या को भंग करने के लिए प्रयास, इंद्र बहुत बार ऐसे करते रहते। तो मगर नरनारायण ऋषि किसी भी प्रकार विचलित नहीं हुए अपने, वैसे उनको मूर्ख थे इंद्र, ये नहीं जान पाए थे कि वो सुप्रीम लॉर्ड है कि नहीं, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो इंद्र और ये अप्सराओं के पास की बात क्या है? कंदर को कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वो तो वो जो कंदर के सामने आया है, कंदर मतलब कामदेव, वो ऐसा हजार एक करोड़ कंदर्पों को मिलाएंगे तो भी उनकी जैसा सुंदर नहीं हो सकते। और वो आया उनके सामने क्या करेगा? वो आया बाद में नारायण ऋषि देखे क्या कर रहे इधर बकोट का। फिर उन्होंने अपने शरीर से बहुत सारे दिव्य स्त्रियों को प्रकट किए नारायण ऋषि, बहुत सारे दिव्य दिव्य, और इतने दिव्य और इतने सुंदर स्त्रियां थे जो देवताओं ने आए थे उनको उनको तपस्या से भंग करने के लिए, उन देवताओं का मन विचलित हो गया। वो लोग नरनारायण ऋषि को प्रतिक्षमा मांगे और उस स्त्रियों को देखते रह गए। ऐसे लड़कियों को प्रकट किया नरनारायण ऋषि, इसमें फोटो भी है, किधर गया? ये नरनारायण, नारायण ये नर है, ये क्यूपिड, ये कामदेव, और ये सब अप्सराएं थे। उन्होंने फिर दिव्य अप्सराओं को, दिव्य देवियों को उन्होंने प्रकट किया उनके शरीर से। वो देख के कंदर्प भी, स्वयं कामदेव भी उन स्त्रियों के प्रति आसक्त हुए, ऐसा हद कर दिया। इस चीज को देख के नरनारायण ऋषि हंसने लगे, मुस्कुराए, क्या बोले मालूम है? देखो इसमें से एक चुन लो जो सबसे सुंदर लगती हो और लेके चले जाओ, स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी, तुम्हारे स्वर्ग में इतना सुंदर कोई नहीं है। तब सभी लोगों ने मिलके किसको चुने थे मालूम है? उर्वशी। ये जो उर्वशी अप्सरी है, अप्सरा है, ये भगवान नरनारायण के
सृष्टि है। उर्वशी जितना कोई अप्सरी सुंदर नहीं है देवलोक में, ये फिर उर्वशी को लेकर वो लोग कहते हैं। इंद्र जब ये सारी कथाओं को सुना, हाय हाय करने लगा, मैं भगवान के चरणों में अपराध किया करके हाय हाय करने लगा, ये ऋषि है इस प्रकार। तो इससे वो शिक्षा, एक तो अपना ऐश्वर्य को प्रकट कराते हैं कि मैं भगवान हूं, और दो और मैं सभी प्रकार के सभी दृष्टिकोण से मैं श्रेष्ठ हूं। दूसरा ये शिक्षा देते हैं कि हर परिस्थिति में हमको अपने तपस्या में डटे रहना चाहिए, इस चीज को हमको बताते हैं। मैं कई जगहों को भी देखा, खास करके तीसरा ग्यारहवा पहला स्कंदों में ये नरनारायण ऋषि का वर्णन श्री प्रभुपाद अनेकों जगहों पे करते हैं, वही मैं अभी अभी पढ़ रहा था। तो कुछ जगहों पे प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्यों को लिखते हैं नरनारायण ऋषि के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में। ये तीसरे स्कंद में एक सुंदर तात्पर्य है, मैं उस तात्पर्य को डायरेक्टली पढ़ता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य मतलब श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन, अगर कभी भी श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनने के मन होता है व्यक्ति को, तो उनको चाहिए कि आप उनकी किताब निकाल के उनकी तात्पर्य पढ़े, ये उनका प्रवचन है ना। और श्रील प्रभुपाद हमारे संघ में रहने का जो अनुभूति है वो तात्पर्य से हो सकता है, इसलिए हमको अगर डेडिकेट होना है श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, तो केवल किताबों का वितरण नहीं, किताबों का अध्ययन बहुत जरूरी है। जिनको हमेशा रिक्वेस्ट करते थे कि मेरे किताबों को वितरण करने से तो मैं खुश होऊंगा, मगर उससे ज्यादा जब मेरी किताबों को पढ़ोगे आप। उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्मसंयम की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी, दक्ष की पुत्री, मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण जुड़वे रूप में जन्म लिया। दक्ष प्रजापति, उनकी पुत्री का नाम था मूर्ति, हाँ उनका लड़के का नाम था मूर्ति, और ये मूर्ति को विवाह करवाए थे धर्म के साथ, तो ये धर्म और मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण करके जुड़वा लड़के जन्म हुए। कामदेव की सखियां, स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने के लिए आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपनी समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी थी। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत हैं, वे समस्त प्रकार की तपस्याओं तथा आत्मसंयम का उद्गम है। आत्म साक्षात्कार की सफलता प्राप्त करने के लिए मुनिगण तपस्या तथा महान व्रत लेते हैं। तपस्या क्यों करना चाहिए, शरीर को कष्ट क्यों करना चाहिए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए हमको तपस्या करना चाहिए, आत्म साक्षात्कार होने के लिए तपस्या करना चाहिए, और कोई उद्देश्य से और कोई तपस्या और किसी उद्देश्य से नहीं किया जाता है। तपस्या का उद्देश्य क्या, आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मतलब क्या, अपने आप को जानना और भगवान को जानना और भगवान के साथ हमारा संबंध को जानना, उसके बाद उस हिसाब से काम करना, यह है आत्म साक्षात्कार। समझ पा रहे हैं आत्म साक्षात्कार मतलब। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिला है, मनुष्य जीवन तपस्या के लिए ही प्राप्त हुआ है। तपस्या के कठोर जीवन में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, आत्म साक्षात्कार के निमित्त है, इसीलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म पद्धति में जीवन के तीन स्तरों पर स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। अब देखेंगे हमारा पूरा जो वैदिक ये है वर्णाश्रम पद्धति है, उसमें पूरे समाज को चार वर्णों में विभक्त किया गया है। क्या क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन चार स्तरों में देखेंगे केवल एक स्तर में 25 से 30 साल के लिए ही स्त्री के साथ रहने के लिए परमिशन है, बाकी बचपन से लेकर 25-30 साल तक वो स्त्री के साथ नहीं रहेगा। फिर उधर लगभग 45-50 से लेके मृत्यु तक स्त्री के साथ नहीं रहेगा। 25 साल ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता है व्यक्ति, 25 साल 30 साल के बाद उसको शादी करता है, वो शादी करके गृहस्थ जीवन अपनाता है, फिर वो लगभग 45 तक खींचेगा, 45-50 तक। 45 के बाद तुरंत उसको समझना चाहिए शास्त्र अध्ययन और भगवत सेवा में अपने आप को लगा देना चाहिए, भले ही घर में रहे
जैसे ही उसको 50-55-60 तक पहुंच जाता है एज, उसको तुरंत क्या करना चाहिए, स्त्री को छोड़कर परिवार को छोड़कर वो तुरंत संन्यास आश्रम को स्वीकार करना चाहिए। तो ब्रह्मचारी स्त्री नहीं, वानप्रस्थ स्त्री नहीं, सन्यासी स्त्री नहीं, केवल ब्रह्मचार्य केवल गृहस्थ जीवन में ही स्त्री है। चार भागों में से केवल एक भाग में ही स्त्री की परमिशन दी गई है, ये मनुष्य जीवन, तभी जाके वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार हो सकता है, अगर आत्म साक्षात्कार करना चाहता है तो। स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। सांस्कृतिक विकास क्रम से अनुसार जीवन के चार विभाग ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास है। जीवन के प्रथम अवस्था प्रथम 25 वर्ष मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, जिससे वह समझ सके कि स्त्री ही इस भौतिक संसार की वास्तविक बंधन का कारण है। यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे स्त्री के रूप के प्रति आकर्षण से मुक्त होना पड़ेगा। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहिक तत्व है, किंतु नर रूप में विशेष रूप से मनुष्य जीवन में तो आत्म साक्षात्कार के लिए निमित्त है। सारा संसार स्त्री के आकर्षण के जादू से गतिशील मतलब चलता रहता है। रूपा जी का अनेकों तात्पर्य में से कई जगह मैं पढ़ा हूं। सुबह उठ के रात को सोने तक लोग काम करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिव रहते हैं, उसके पीछे दो शक्तियां काम करता है, वो है पैसा और स्त्री, और वो पैसा भी स्त्री के लिए होता है। वो भौतिक बंधन को कठोर ग्रंथि का शिकार बन जाता है। स्त्री के साथ जुड़ाव हो जाने के बाद ही विशेष रूप से स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा, पति कंट्रोलर प्रतिष्ठा, नशे की अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने का लालसा उत्पन्न हो जाती है। घर भूमि संतान समाज के महत्वपूर्ण बनना, जाति जन्मभूमि के प्रति प्रेम, धन और इन सारे चीजों के प्रति वो ललुपता हो जाता है, माया जाल अथवा भ्रामक स्वप्न के तुल्य है। मनुष्य को घर लेते हैं और मनुष्य अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है, आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति बंद हो जाता है। ब्रह्मचारी जो प्राय उच्च जाति का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष के अवस्था से 25 वर्ष तक वो शिक्षा प्राप्त करता है और जीवन के मूल्य तथा जीविका के लिए विशिष्ट शिक्षण प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मचारी के घर जाने का दिया जाता है। 25 साल ब्रह्मचारी रहने के बाद उसको घर में जाने के लिए परमिशन है, जहां वो गृहस्थ जीवन मतलब वो शादी कर सकता है, जीवन में प्रवेश कर सकता है, और प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करना होता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी होते हैं जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, किंतु वे स्त्रियों से किसी भी प्रकार का संपर्क भी नहीं रखते हैं, उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं, वो ये भली बात ही जानते हैं कि स्त्रियों की संगति एक अनावश्यक झंझटमारी है, इससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है, क्योंकि आयु विशेष कामिच्छा अत्यंत प्रबल हो जाती है आयु के अनुसार। इसीलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकते हैं, यह छूट केवल उनके लिए है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, और ऐसी भेद कर पाना प्रामाणिक गुरु के लिए संभव है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम अनावश्यक है, जो गृहस्थ ब्रह्मचारी का साम्यक शिक्षा प्राप्त करने के बाद शास्त्रानुमोदित रीति से स्त्री के संगति करता है, वो कुत्ते बिल्लियों की तरह का गृहस्थ नहीं बनता है। ऐसा गृहस्थ 5 वर्ष के आयु के पश्चात स्त्री के संगति का त्याग कर ऐसे गृहस्थ 5 वर्ष नहीं है 50 वर्ष के आयु के पश्चात स्त्री के संगति को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। जब यह अभ्यास पूरा हो जाता है वो वानप्रस्थी सन्यासी ग्रहण करता है तथा स्त्री से यहां तक कि अपनी विवाहिता पत्नी से भी अपने आप को अलग कर लेता है। स्त्री से वियुक्त होने के पूरी योजना का अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और भगवान नरनारायण रूप में स्त्री से अलग होने की शिक्षा देते हैं देने के लिए प्रकट हुए हैं। दृढ़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन में सड़ होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं, किंतु भगवान के समक्ष उनकी एक भी चलती नहीं है, और क्योंकि जब देवी सुंदरियां देखा भगवान की योग माया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती है और उन्हें बाह्य रूप से आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, एक आम, एक आम कहावत है, हलवाई कभी मिठाइयों से लालचता नहीं है। समझ गए क्या? हलवाई मतलब जो मिठाई बनाने वाला, वो मिठाई खाने का रुचि नहीं होता उसको, मिठाई देते ऐसा नहीं लगता, हाँ मिठाई मिठाई, वो उसको ऐसा नहीं लगता। ठीक वैसे है, इतने सारे सुंदरियां आ गए भगवान के सामने, मगर उनको देखा ऐसा नहीं हो सुंदर, क्योंकि वो खुद ही सुंदरता का आगार है। आगार मीन्स डिपो, स्टोर हाउस है कि नहीं। इसी प्रकार भगवान अपने हलादिनी शक्ति से असंख्य देवी सुंदरियां उत्पन्न कर सकते हैं, अतः भौतिक संसार की छद्म सुंदरियों से लेस मात्र भी आकृष्ट नहीं होते हैं। जो यह नहीं जानता है वो मूर्खतावश दोष देता है कि भगवान की अलग अलग वृंदावन की लीलाएं और द्वारका की लीलाओं के बारे में। तो खास करके ये जो नरनारायण का रूप है, चाहे वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो और ब्रह्मचारी हो, इन सभी लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ये जो भौतिक संबंधियों संबंध हैं, वो चीज हमारे लिए अवरोधक हैं, बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं। तो हमें चाहिए अगर आत्म साक्षात्कार में प्रगति होना है तो इन सारे आसक्तियों को सबसे पहला तो कृष्ण भावनामृत करें, और उसके साथ साथ जो अवधि दी गई है शास्त्रानुसार, आचार्यों के अनुसार, उस अवधि के अनुसार ही हमको कार्यरत रहें, तब जाके हम निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो सकता है। इस प्रकार की ये इंद्रिय निग्रह की पद्धति के द्वारा आत्म साक्षात्कार की शिक्षा ये श्री नरनारायण ऋषि हमें प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। भगवान श्री नरनारायण की, श्रीमद्भागवतम की, श्री प्रभुपाद की।